ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பிரம்ம விஜயான கேந்திர ஸ்ரீ கைலாசாசமிக்கு பஞ்சம பிட்டாதீஸ்வர் பிரம்மலீன சுவாமி பிரேம்புரி மகாராஜி கே சம்ஸ்மரண சி संस्थापित है अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में. प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम में अब विशेष कार्यक्रम है छांदोग्य उपनिषद ज्ञान यज्ञ. कल तक नवम खंड हो गया था, प्रथम अध्याय में दसम खंड चलेगा. उद्गीत का उपासना प्रारंभ हुआ. ओम इत्येतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासितम्. उद्गीत है साम का अवयव. साम में पांच भाग है, हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधनम आगे आएगा. और सात भाग भी है, एक आदि और एक उपद्रव, दो मिल जाएगा तो सात भी हो जाएगा. सात भाग वाले साम उपासना आगे आएगा, पंचभक्ति का साम उपासना भी आएगा. अभी उद्गीत उपासना के प्रसंग में उसके उद्गीत के पूर्व में है प्रस्ताव और पश्चात प्रतिहार. तो प्रस्ताव का उपासना प्रतिहार का उपासना आरंभ करने के लिए विधान करने के लिए कहते हैं. उद्गीत उपासना चल रहा था, उसके प्रसंग से उद्गीत के समीपवर्ती भाग का नाम प्रस्ताव और प्रतिहार, ये दोनों का उपासना विधान करना है. ये विधान करने के लिए के आख्यायिका रूप से विधान करते हैं. आख्यायिका के द्वारा अर्थ सुगम से बोध हो जाए, इस अभिप्राय से श्रुति आख्यायिका द्वारा कहती है. मटची हतेषु कुरुस्वाटिक्या सह जाय यो शक्तिर हचाक्रायन इभ्य ग्रामे प्रद्राणक उवास. मटची हतेषु कुरुषु, मटची है वर्षा में वज्रपात होता है और कुछ कीड़े होते हैं कभी कभी से आते हैं. इतने कड़े कहां से आ जाएंगे, बादल जैसे हो जाता है, अंधकार हो जाता है और आकर के धान गेहूं मूंग जो कुछ है सब पत्ते भी सब खा लेंगे. अथवा कभी अतिवृष्टि होकर के बन्या होकर के ऐसे शस्य नष्ट हो जाए. शस्य नष्ट होने पर दुर्भिक्ष हो जाता है, भोजन नहीं मिलता, बाजार में भी नहीं मिलता. तो मटची हतेश कुरुसु, कुरु देश में ऐसे जब हो गया, दुर्भिक्ष हो गया. एक चाक्रायन नाम का महर्षि थे, गृहस्थ है. गृहस्थ आश्रम में पत्नी के साथ मिलकर के कर्म करना होता है. कभी पत्नी का वियोग हो गया, समाप्त हो गई, तो या तो संन्यास ले ले या तो कर्म करने के लिए फिर द्वितीय विवाह करे. तो ऐसे प्राचीन परंपरा में विधवा विवाह नहीं करते, तो कन्या विवाह करते थे. तो चाक्रायणी की पत्नी छोटी थी. आटिक्या सह जाये, आटिक्या जाये या सह, जाया है पत्नी, उसका विशेषण है आटिकी आटिक्या. आटिक ऐसा है अभी छोटे है, स्त्री का जो चिन्ह स्तन आदि उसमें अभी स्पष्ट नहीं दिखता है, नहीं हुआ है, मतलब छोटी है. ऐसे आटिक्या जाया सह उशक्ति चाक्रायण, चक्र के अपत्य होने से चाक्रायण नाम हुआ. उशक्ति है नाम. वो जाकर के अपने देश छोड़ करके कहीं जो दुर्भिक्ष हो जाते हैं, हो जाता है, तो बहुत लोग अपने देश छोड़ करके बाहर चल जाते जहां कुछ खाद्य मिले. वहां जाकर के एक इभ्य ग्राम है उवास. इभ्य ग्राम, इभ्य है ईश्वर को भी कहते, हस्त्यारो हस्ती पालन करने वाले माहूत कहते, उसको कहते इभ्य. जो हाथी रखते हैं सेवा करते हैं, हाथी के द्वारा कुछ कार्य कराते हैं राजाओं का, हस्त्यारो उसके ग्राम में जाकर के वो प्रद्राणक, प्रद्राण कहे द्रा कुत्सित गतो, भोजन प्राप्त नहीं होने से बहुत जैसे इसे की अंतिम समय हो जाएगा, भूखे हो रहते रहते अन्न लाभ नहीं, उनसे बिल्कुल दुर्बल हो गए, चलने फिरने मुश्किल है, तो वो जाकर के वहां पहुंच गए, अंत्यावस्था को प्राप्त, आगे भोजन नहीं मिलेगा, ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। किसी के घर में जाकर के रहा पत्नी के साथ, ये पत्नी छोटी है इसलिए उसको छोड़कर कहीं कार्यक्रम इधर जाए तो कोई व्यभिचार की शंका नहीं, इसलिए इसे छोटी पत्नी के साथ किसी के घर में जाकर के रहा। और जब भूख लगती है, अपने पास नहीं है तो मांगना ही पड़ता है, तो गया कहीं कुछ कोई किससे कुछ लेने के लिए, सह इभ्यम कुलमासान खादन तम विभिक्षे तम होवाच नेतोन्य विद्यन्ते यच्चम ये म इम उपनिहिता इति। सह इभ्यम भिक्षा के लिए इधर उधर जाते समय देखा कोई व्यव हस्ती पालन करने वाला हस्त्यारो कुछ खा रहा है, तो उसके पास गए। कुलमा से उरद कुसित मास, कुलमा से उरद, उरद का भिगा करके इसे कुछ करके खाता खा रहा है, दुर्भी की अवस्था में कुछ जो मिला, कुछ गौ को हाथी को खिलाना कुछ खिलाना, उसे कुछ दाना भिगा था वो खा रहा था। खादंतम विभिक्षी, खाते हुए भ्य से मांगा हमें उसको दे दो भोजन, भूखा है। तम हो वाच, उसको चाकरान महर्षि से हस्त्यारो ने कहा, ने तो अन्य विद्यन्ते इतः अन्य न विद्यन्ते, जो खा रहा है यही मेरे पास इतने ही है, इससे भिन्न मेरे पास कुछ है ही नहीं। ने तो अन्य विद्यन्ते यत्स ये इम उपनीता, जो मैं बर्तन में रखकर खा रहा हूं, रख दिया था थाली में खा रहा हूं, ये मेरे पात्र में है झूठे, इससे अन्य मेरे पास है ही नहीं, उपनीता थी तो क्या मैं करूं, मेरे पास है ही नहीं, अभी मैं यही खा रहा हूं। एतेषां मे देही तिहोवाच तान अस्मि प्रददो हन्तानुपानितुचिष्टं वै मे पीतं स्यादितिहोवाच। तो उशक्ति चाकराने ने कहा, एतेषां मे देही, इनमें से ही मुझे थोड़े दे दो, अब कुछ है ही नहीं, जो खाते उसमें से थोड़े दे दो। देही तिहोवाच तान अस्मै प्रददो, जो खा रहा था उसको उनको दे दिया, प्रददो, तो भूखे है उसको ले करके एक थोड़े खाने लगे, जो देखे खाते है कोई खिलाता है उसके मन में भी दया है, भूखा है तो देते ही खाने लगा, तो बड़े खुश है खाए, कहा ये पास में पानी था, हम तो अनुपानम लीजिए खाइए, पानी भी लीजिए, पानी पास में था जो पीने के लिए पी रहा था झूठे, अनुपानमिति ये कहते उच्चिष्टम वे में पीतम साधिति होवाच, ये पानी में नहीं पीऊंगा, पानी झूठे है, इसको पीऊंगी तो झूठा पानी पीना हो जाएगा। उसको आश्चर्य लगा, ये क्या कहते इतने बड़े ब्राह्मण विद्वान है, हम तो मूर्ख लोग, हमको मालूम नहीं, ये झूठा मैं खा रहा था, मैं देखा उसमें से दिया उसको तो खा रहे, बड़े खुश होकर के बड़े भूखे दिखा रहे, और पानी देने के बाद झूठा है, ये क्या रहस्य, न स्विदेते प्युचिष्टा इति न वा अजीविष्यमिमान खादनिति होवाच कामो म उद पानमिति। क्या ये क्या झूठे नहीं, जो व्रत खा रहे हो, मैं खा रहा था झूठा है उसमें से दिया, अपने देखा मैं खा रहा था, ये क्या झूठा नहीं क्या, अर्थात झूठा आपको मालूम है, मैं खा रहा था अपने मांगा, मैं कहा मेरे पास नहीं यही है, देखा है उसमें से लेकर खा रहे हो, क्या ये झूठा नहीं है क्या। नवे अजीविष्यम इमान कादन, ये झूठे होने पर भी इसको मैं नहीं खाता तो मर जाता है, जीवित नहीं रहता। और जल काम इति होवाच कामों में उदपानम, जल पीने के लिए तो मुझे मिल जाएगा जतेच प्राप्त है, तो झूठा जल क्यों पियोगा। तो इसमें से क्या बताते हैं, इस अवस्था को यदि प्राप्त हुआ कोई, और उसमें भगवान भाष्यकार कहते इसे मरणासन्न हो गया तो भी धर्म का ऐसे यदि कुछ उल्लंघन किया, जैसे कर्मकर्ता झूठा खाया, तो पाप नहीं लगेगा। जब इसी अवस्था को प्राप्त होने पर, और खाली इसी अवस्था को प्राप्त होने पर कोई भी निषिद्ध कर्म करेंगे तो पाप नहीं होगा, ये बात नहीं। कौन ऐसे कर सकता है? विद्या धर्म यशोवत स्वात्म परोपकार समर्थस्य। इसमें विशेषण दिया, जिसके पास विद्या है, कुछ धर्म करता है, जैसे ख्याति भी है, और इतने होने के बाद भी यदि एकदम अंतिम अवस्था है, खाने के बाद भी ज्यादा समय बचने वाला नहीं, मरने वाला है, अथवा किसका उपकार कुछ नहीं कर पाता है, अपना भी कल्याण नहीं कर पाता है। जो बहुत ऐसे लोग है, अपना ना कल्याण करते, खा करके बचना ये अपना कल्याण नहीं है, भोजन करके जीवित रहना ये अपना कल्याण है। भोजन करना, जीवित रहना, तो पेड़ भी जीवित रहता, पशु पक्षी तरव भी जीवंती, जीवंती मृग पक्षिण सजीवती मनो यस्य मनने न उपजीवती। वृक्ष भी जीवित रहते हैं, पशु पक्षी भी जीवित रहते हैं, वो जीवन का क्या हिसाब है? ऐसे मनुष्य जीवित रहता, खाकर जीवित रहता, तो उसका जीवन मरना समान है। तो जीवन किसको कहेंगे? सजीवती मनो यस्य मनने न उपजीवती, वही जीवित है, उसका जीवन सार्थक है जो मनन परमात्मा चिंतन करके जीवित रहता है। यदि परमात्मा चिंतन नहीं करके खाली इसी जीवित रहता है, उसका जीवन पशु पक्षी पेड़ पौधे के जीवन के समान है। तो ये किसी स्वात्म परोपकार समर्थस्य, जो अपना भी उपकार करता है, दूसरे को भी उपकार करने के लिए समर्थ है, दूसरा उपकार करने के लिए। विद्या धर्म यश भी है, अपना अथवा अन्य के कल्याण करने के समर्थ है, और इस अंतिम अवस्था को प्राप्त होने पर ये कर्म करता है तो पाप स्पर्श नहीं होगा, अन्यथा पाप स्पर्श होगा। इतने अवस्था भी अभी जैसे नहीं खाए तो मर जाएगा, और विद्या धर्म यश, उसके पास विद्या भी धर्म है, धर्म पालन करने वाला है। ये नहीं कि हमेशा ही झूठा खाता, निषिद्ध भोजन करता, ऐसा नहीं। धर्म पालन करते हुए भी इसी अवस्था को प्राप्त हुआ, और थोड़े झूठा खाकर श्रद्धान करे तो अपना भी कल्याण कर सकता है, अन्य का भी उपकार कर सकता है। जो अपना कल्याण ही अपना कल्याण, थोड़े कुछ अपना संध्या वंदन करते हैं, भगवान का भजन करते, नित्य कर्म करते, गायत्री आदि जप करते, अपना कल्याण है, और दूसरे को उपदेश कर सकते है, ब्राह्मण है, तो ऐसे कर्म करेगा तो पाप नहीं होगा। फिर उसे के में स्पष्ट भगवान भाष्यकार कहते, यदि उसी अवस्था में प्राप्त होने पर भी मरणासन्न हो गया, धर्म यश आदि है, अपना दूसरे कल्याण करने के लिए समर्थ है, किंतु प्राण रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा उपाय है तो भी नहीं करना चाहिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है तो निषिद्ध कर्म कर लिया, झूठा खा लिया तो पाप लगेगा नहीं, अन्य कोई उपाय है कर लिया तो भी पाप लगेगा। ये अन्य उपायांतर है, अजुगुप सिद्ध अनिंदित, अन्य कोई उपाय है वो भी निंदित है, वो अलग बात है। अन्य कोई उपाय है अनिंदित, शास्त्र विहित तो कोई उपाय है जिसके द्वारा प्राण रक्षा हो सकती है, तब ये खाना नहीं चाहिए झूठा भी, तब दोष होगा। और जो अपने को ज्ञानी मान करके, ज्ञानी लोगों को कहला करके कहते, ज्ञान होने के बाद को विधि को निषेध, जो चाहिए हम कर सकते हैं, लोग के सामने अपने ज्ञानी तो क्या ख्यापन करके ऐसे कर्म करेगा तो नरक पात से आदेव। भगवान भाष्यकार कहते हैं, ज्ञानित्व का बहाना दे करके, उसको निमित्त दिखा करके निषिद्ध कर्म करेगा तो नरक जाएगा। ज्ञानावलेपन कुर्व तो नरक पात, ये एक समय में किसी को बीमार रोग हुआ, ये रोग चिकित्सा करने पर तो ठीक नहीं हो पाया, कोई मीमांसा कोई वैद्य कहते हैं इसके अंदर कुछ कीड़ा घुसा हुआ है, तो उनको बताए मीमांसा जो मद्यपान करेगा तो इसका रोग ठीक हो जाएगा। वैद्य ब्राह्मण को बता दिया, कुछ गोप्य कुछ बता दिया, तो मद्यपान करने से इसकी कीड़ा निकल जाएगा तब रोग ठीक हुआ, नहीं तो कोई दूसरा उपाय नहीं। पूछा गया मीमांसक जैमिनी महर्षि, तो क्या मद्यपान करेंगे ब्राह्मण? तो मद्यपान तो निषिद्ध है, ब्राह्मणों का मद्यपान बहुत निषिद्ध है। कोई मद्यपान करता है तो शास्त्र में उसके लिए प्रायश्चित विधान किया गया, पाप कर्म प्रमाद से हो जाए तो पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित विधान हुआ। किंतु मद्यपान करने वाले के लिए पाप कर्म निवृत्ति के लिए प्रायश्चित क्या है, कभी सुना है? कोई मद्यपान करता है तो प्रायश्चित के लिए क्या करना है? मद्य बहुत मद्य बड़े बर्तन भांडे में रख करके गर्म करना, बहुत गर्म हो जाए, एकदम अति अधिक गर्म हो जाए, फिर उसको उसके ऊपर डालते जाओ। मद्य बहुत गर्म हो गया जला, उसको लेकर उसके ऊपर डालो, कब तक? मरते मर जाए। मैं गर्म मद्य डालकर उसको मार देना, यही प्रायश्चित है। जबरदस्ती नहीं, प्रायश्चित स्वयं कहेगा मेरे ऊपर डालते जाओ। प्रायश्चित विधान करना है तो गर्म मद्य को गर्म करते 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 उसको डाला, मर जाए और जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं, ये प्रायश्चित है। इसलिए मद्यपान के क्या, उसके स्पर्श भी नहीं करना, मद्यपान करने वाले के पास भी नहीं जाना चाहिए। कोई मद्यपान करते तो उनके साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, घर में मद्य आना नहीं चाहिए, कोई स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और जो विवाह आदि में मद्य आदि पीकर नाचने कूदने के वाले आजकल चलते हैं, इसमें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने बेटी की शादी कराते तो भी वो आएंगे तो बरात तो कहेंगे हमको रुपया दो, कहते उनको रुपया देगा मद्य पीकर नाचने के लिए, नहीं देना चाहिए। कोई बरात आएंगे तो पीएंगे, नहीं करना चाहिए बिल्कुल। उसके द्वारा अलक्ष्मी का प्रवेश होता है, देवता लोग दूर भाग जाएंगे, पितृ लोग दूर भाग जाएंगे, भूत पर जो पिशाच का ही भाग होता है, अशांति होती बिल्कुल। कभी शादी विवाह के समय कभी भी कोई कहते ना इसमें ज्यादा नशा नहीं, ज्यादा काम क्या है, उसको स्पर्श ही नहीं करना चाहिए मद्य, तो ऐसे शास्त्र में निषिद्ध है। ये ब्राह्मण को कहा गया ये मद्यपान करेगा तो रोगटी हो जाएगा, तो अभी विचार करते क्या उसको जीवन रखने के लिए निषिद्ध कर्म करना चाहिए अथवा नहीं करे, रोग कर मर जाए, कष्ट सहन करना चाहिए। तो जमीन महर्षि का बताया नहीं, मद्यपान करो ठीक हो जाएगा। तो वहां सरस्वती प्रकट हो गई, क्या जमीनी तुम्हें इसे साथ दुशास नहीं करो, इसे तुम समर्थन कर दो तो मद्यपान करने के लिए, पाप कर्म में कैसे समर्थन करते हो? तो ये कहता है पिबरे मद्यपान पियो तुम, ये बाग देवती है, ये मीमांसा का रहस्य क्या जानती है? मीमांसा में इतने ज्ञान ही, कहते बाग देवती शब्द समृद्ध देवते है, मीमांसा का रहस्य इसको क्या मालूम है? पियो तो उसे मध्य जब कहा तो फिर लिया सबके राजा के सामने ब्राह्मणों सभा में जमीनी महर्षि पियो, मैं कहता पियो कुछ नहीं होगा। अरे मीमांसा के महर्षि वो जो मद्य लेकर के यहां तक लाया उसके ऊपर छींक होकर के वो कीड़ा निकल गया, ठीक हो गया। अभी कह रुको 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 अब मद्य पीना नहीं। अभी इसके पर विचार हुआ, जब मद्य पाने के बिना ही हो रोग निवृत्ति हो, कीड़ा निकल गया रोग निवृत्त हो गया, तो फिर मद्यपान करने के लिए कैसे अनुमति दी? अनुमति तो अब भी है, दूसरे उपाय नहीं है, तब निषिद्ध कर्म करेगा तो पाप नहीं लगेगा। अभी तो उसके बिना रोग निवृत्ति होगी, दूसरा उपाय है तो कैसे मद्य के लिए अनुमति दी? फिर कहा ये वैद्य ने बताया था, मद्यपान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मद्यपान नहीं करता है उसको यदि कहीं थोड़ा ऐसा सूंघ लो वो दूर से में रखेगा, स्पर्श ही नहीं करेगा। जो मध्य स्पर्श करने के लिए बिल्कुल मध्य स्पर्श नहीं करते, करना नहीं चाहिए करके दूर में, उनको स्पर्श करने के लिए भी बड़ा कष्ट होता है। जैसे कोई अस्पृश्य है, कोई हड्डी आदि के हैं गिरा, कोई उसे अपरिष्कार कोई जानवर गिरा हुआ, कोई कहेगा इसको इधर कर दो इधर कर दो, कोई स्पर्श नहीं करेंगे, स्पर्श करने वाले कोई कर सकते, सब लोग नहीं करते। हाँ पैर में लग गया तो जाकर धोएंगे, अपवित्र हो गया, शास्त्र तो विहित है, अस्थि आदि का स्पर्श हो गया तो वस्त्र के साथ जाकर के स्नान करना चाहिए। वो भी अस्थि यदि कहीं अभी मांस आदि लगा हुआ गिलापन है तो कपड़ा के साथ जाकर स्नान करना है, ये सब विहित है। तो उसको स्पर्श करने के लिए पैर में स्पर्श, अपरिष्कार कोई होता तो पैर से भी स्पर्श नहीं करना चाहते। तो जो जिनका इतने निषेध है, मद्य को छूना भी नहीं चाहते, वो लेकर सूंघेगा नहीं। अब पीने के अलावा हम कहेंगे जब इसको पास में आएगा तब पता इतनी जल्दी नहीं पिएगा, ऐसा करते करते सोचते सोचते उसी के गंध से उसका रोग निवृत्त हो जाएगा, ये हमको मालूम है। किन्तु इतना नहीं करता तो वो दूर में रखता, छूता नहीं, छूता तो ऐसे ऐसे करता। और जितने सूंघने से रोग कीड़ा निकलना है इतने करने के लिए उसको कहा पीने के लिए, पीने के लिए जब लेगा वो ठीक हो जाए पहले मालूम है, तो इसके लिए कहा गया जो निवृत्त हुआ। अर्थात ये सिद्ध हुआ यदि कोई दूसरा उपाय है तो निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दूसरा उपाय है सूंघने से ठीक हो जाता है, एक रोग ठीक होगा, और सूंघने के लिए उसको नहीं कहकर पीने के लिए कहा गया, जब पीने के लिए लाएगा थोड़ा उसका गंध से वो रोग निवृत्त हो जाएगा, पीने के लिए बंद कर देंगे। यहां स्पष्ट करते हैं भगवान वासीकर, ऐसी अवस्था अंत अवस्था को प्राप्त होने पर जो ऐसे कर्म करेगा पाप स्पर्श नहीं होगा। किसको? भाष्य में है विद्या धर्म यशो, तो विद्या धर्म यश वाला हो, अपना और पर उपकार के लिए समर्थ हो, इसी अवस्था में प्राप्त होने पर पाप स्पर्श नहीं होगा। वो भी यदि जीवन के प्रति दूसरा कोई अनिंदित उपाय हो तो इसे निषिद्ध कर्म करेगा तो पाप होगा। तो ज्ञानित्व का बहाना करके कोई यदि निषिद्ध कर्म करता है नरक पात होगा। बहुत लोग ऐसे ज्ञानित्व का ज्ञान तो नहीं होता है, ज्ञानित्व का आरोप करे दूसरे को बता करके, ज्ञानी हम जो चाहे कर सकते हम कोई विधि निषिद्ध नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान होने के बाद कोई निषिद्ध कर्म नहीं करके सन्मार्ग में चलने पर अंतकोण शुद्ध हो कभी जाकर के ज्ञान होता है। यथाकाम अपनी सिद्धानंद कश्चिन व्यक्ति कितने प्रयत्न कर जाने पर वहां जाता है ज्ञान होने के बाद, और सोचा मुझे ज्ञान हो गया, अभी जो तुम्हें पहले फेंक दिया था जिसको छोड़ देते हैं उसको फिर ग्रहण करने के लिए आएगा। जिसको कितने पहले निषिद्ध कर्म के छोड़कर आगे बढ़ते बढ़ते जाकर के ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद कहेगा ये जो चीज को जैसे अपने मल का सोच करके जो निकाल दिया उसको देखने चाहिए, ऐसा करेगा उसमें आएगा क्या नहीं? वो कहेगा हमको ज्ञान हो गया, हम जो कुछ कर सकते हैं, ये सब ठीक नहीं है। ऐसे बहुत लोग करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि कहते हैं हमारा ज्ञान हम कुछ कर सकते हैं। कोई व्यक्ति संन्यास लिया गुरु से काषाय वस्त्र पहन करके हो गया, कुछ देने के बाद सफेद पहनने लगा, कहा कपड़ा में क्या रखा है? अब भक्त लोग समझा थी कपड़ा में क्या रखा है, कपड़ा में तो कुछ नहीं, तो कपड़ा में क्या रखा अगर तुमको अभी समझ आया, तुम्हारे गुरु को समझ नहीं आया था? गुरु जी ने तुमको काषाय वस्त्र दिया उसमें उस समय साष्टांग प्रणाम करके काषाय वस्त्र ग्रहण किया, अभी तुमको समझ आ गया कपड़ा में कुछ नहीं। ये तो सबको मालूम है कपड़ा में कुछ नहीं, कपड़ा में कुछ नहीं, कपड़ा से कुछ मोक्ष नहीं होता है या काषाय वस्त्र पहनने से मुक्त हो जाए ये बात नहीं, किन्तु कपड़ा में कुछ नहीं रखा करके सफेद वस्त्र पहना इसमें क्या बिगड़ेगा? जो गुरु ने दिया काषाय वस्त्र था इतने देर पहना, अभी अपन दिखाने की हमको ज्ञान हो गया, अभी कुछ भी कर सकते हैं। तो कपड़ा में कुछ नहीं रखा तो ये सफेद वस्त्र पहन तो मैं कहा तुम साड़ी पहनो साधु है ब्रह्मचारी साधु है साड़ी भी पहनो, कपड़ा में कुछ नहीं रखा तो पैंट कोट भी पहनो, कोट भी कोई कोई पहन लेते हैं, पैंट पैंट भी पहन लेते हैं, विदेश कोई जाते तो पैंट साड़ी भी पहन लेते हैं साधु। तो ये आया ज्ञान को देखा करके कोई करता तो नरक पात होगा। अर्थात ये किसी अवस्था में अभी देखो पानी अन्यत्र मिल जाएगा तो झूठा खा लिया तो कोई को एकादशी के दिन भूल जाते हैं अन्न खाने लगे, ये फिर क्या कहते चलो सूर्य तो हो गया खा लो आज ये नहीं चलेगा। यदि सूर्य हो गया निकला तो पता चला वही बंद करो, इतने जितने खाया एक थोड़ा बिस्कुट खा लिया पता चला कि आज एकादशी आगे उस दिन नहीं अन्न खाओ दूसरे दिन फिर एकादशी करो, ये दंड है। ये नहीं कि अभी आरंभ कर लिया तो चलो आज अन्न खा लेंगे काल को पलाहार कर देंगे, वो नहीं चलेगा। अन्न यदि खाते समय पता चला जितने खाए आगे अन्न नहीं खाना और दूसरे दिन फिर पलाहार करो तो आगे के लिए भी इतने मात्र से नहीं होता है। एकादशी जो दिन उसी दिन होना चाहिए, उसी दिन यदि अन्न खा लिया तो निषिद्ध भोजन तो हो गया। इसका नहीं कि निषिद्ध भोजन कर लिया तो आगे भी शाम को खा लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पता चलने के बाद फिर नहीं खाना चाहिए। तो यदि दूसरा उपाय है तो नहीं करना चाहिए निषिद्ध। पानी दूसरे से पी सकता है इसे झूठा नहीं पिया, और भोजन नहीं करता मर जाता तो खा लिया, तो पानी पीने के जो खाने लगा झूठा वो पानी थोड़ा पी लेने के लिए नहीं, पानी तो पी सकते कहीं नहीं ग्रहण किया। इसी अवस्था को प्राप्त होने पर भी क्योंकि पानी हमको मिलेगा, यदि पानी नहीं मिलता कहीं आसपास तब झूठे भी पी ले। ये श्रुति शिक्षा देती है अपने धर्म का उल्लंघन ऐसे किसी स्थिति होने पर भी उसको छोड़ करके निषिद्ध कर्म नहीं करे। बहुत लोग करते कर लो क्या हो गया, ऐसा नहीं। बहुत लोग करते तो क्या हो गया, बहुत लोग नरक जाते हैं तो क्या आप भी नरक जाओगे क्या? बहुत लोग नरक जाए तो हम क्यों जाएंगे? बहुत लोग कोई पिटाई करता है लोग जाते हैं तो आप कभी जाते होगा? तरह पिटाई करता तो कौन जाएगा? इसलिए सब लोग करने पर भी नहीं करना चाहिए। अपने शास्त्र को जाना समझा, ये वेद उपनिषद मंत्र, वेद मंत्र के अंतर्गत उपनिषद, कोई वेद के बाहर नहीं है। जो कहा गया उसमें इसे सीखने का है।